अरमान के जाने के बाद बाकी चार वहीं रह गए। उन्होंने जल्दी ही उन लड़कियों को जिन्हें उन्होंने बचाया था वहां से भेजने की तैयारी शुरू कर दी। ये सब करते हुए उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं थे, एकदम सपाट चेहरे के साथ उन्होंने सारा काम किया। हालांकि उन्होंने मास्क पहने हुए थे जिससे उनकी पहचान छिपी हुई थी, लेकिन उनकी आंखें और हाव भाव और शरीर की गतिविधियां दर्शा रही थी कि वे इस काम में कितने सक्रिय हैं। जिन लड़कियों को वहां से छुड़ाया गया था उनकी आंखों में उनके लिए कृतज्ञता झलक रही थी। सभी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़ी थीं। एक पल के लिए उन लड़कियों का वो दर्द देखकर सुमित का दिल भर आया। हालांकि सुमित खुद को मजबूत दिखाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन उसका दिल काफी नाजुक था। उन लड़कियों की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। सुमित को इस तरह दुखी देखकर आकाश और ध्रुव ने आहान से कहा, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इन लड़कियों को यहाँ से जल्दी भेजना होगा। अगर हमने देर कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि सुमित यहीं रोना शुरू कर दे। ये कहकर वे तीनों आपस में आंखों से बात करने लगे। आहान ने जल्दी ही काव्या को फोन कर दिया। काव्या शर्मा उनकी टीम का हिस्सा थी। काव्या की उम्र लगभग 30 से 32 साल के बीच थी। बहुत कम उम्र में ही उसके पति का देहांत हो गया था और उसकी एक बेटी थी। अपनी बेटी के साथ वो खुशी खुशी जीवन बिता रही थी और साथ ही साथ वो एक एनजीओ के लिए काम करती थी जो घर से भागी हुई लड़कियों और यौन शोषण की पीड़ित लड़कियों के लिए काम करती थी। डेविल किंग द्वारा लड़कियों को बचाए जाने के बाद आहान ने काव्या शर्मा को फोन कर दिया और अपने आदमियों को सबसे पहले उन सभी लड़कियों के साथ काव्या शर्मा के पास भेज दिया ताकि काव्या शर्मा अच्छी तरह से सब लड़कियों की पूरी जानकारी लेकर जो अपने घर जाना चाहती हैं उन्हें उनके घर भेज दें और जो अपने घर नहीं जाना चाहती उनके लिए रहने का बंदोबस्त कर दें और उन्हें कोई काम दिला दें। वे चारों जानते थे कि काव्या दीदी सारा काम आराम से कर सकती हैं। मैंने उन तीनों के इशारे पर आहान को फोन कर दिया क्योंकि केवल ध्रुव और आहान के पास ही काव्या का नंबर था। सुमित, आकाश और अरमान को छोड़कर काव्या ने आज तक अरमान का सिर्फ नाम ही सुना था। वो बाकी चारों में से सिर्फ आहान और ध्रुव को जानती थी। उन सभी लड़कियों को गार्ड्स के साथ भेजने के बाद वे लोग भी आकाश के विला की ओर रवाना हो गए। वहीं दूसरी ओर आस्था, जिसके घुटनों में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बाथरूम में वो काफी देर तक अपनी किस्मत पर रोती रही, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। आईने में देखकर उसने खुद से कहा, आस्था शांत हो जा, यहाँ तेरे आंसू पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए मत रो, कपड़े बदल ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो मॉन्स्टर यहाँ भी आ जाए और फिर जबरदस्ती तेरे कपड़े बदलने की कोशिश करे, जैसे जबरदस्ती वो साड़ी पहनाने की कोशिश कर रहा था। ये सोचते हुए आस्था ने जल्दी ही अपने कपड़े बदले। उसने अरमान की शर्ट पहन ली, लेकिन उसके घुटनों से खून निकल रहा था। उसने अपने जख्मों को साफ किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब लोअर कैसे पहने। कहीं अरमान के लोअर में खून के दाग लग गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जल्लाद हमें इस बात की भी सजा दे। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने वो लोअर भी पहन लिया। उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। उसके पास पहनने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे। आस्था कपड़े बदलकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा कि अरमान उस कमरे में कहीं नहीं था। आस्था ने राहत की सांस ली। कमरे में आने के बाद आस्था ने चारों तरफ देखा। पूरा कमरा इम्पोर्टेड चीजों से भरा पड़ा था। आस्था हैरान थी कि ये कैसे कैसे स्टैचू वगैरह रखे हुए थे और उन पर लिखा हुआ था कि वे कहाँ से आए हैं, जैसे जापान, इटली, अमेरिका आदि। आस्था बड़े ध्यान से सारी चीजों को देख रही थी। वो एक एक चीज हैरानी से देख रही थी, क्योंकि भले ही वो कमरे में रह रही थी लेकिन उसने अभी तक किसी भी चीज को ध्यान से नहीं देखा था। वो एक फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रही थी। जल्दी ही उसकी नजर एक फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ी। उसने उसे उठाया। उसने कॉटन निकालकर पहले खुद को थोड़ा सा एंटीसेप्टिक से साफ किया। हालांकि उसे काफी जलन लग रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने खुद को साफ नहीं किया तो ठीक नहीं हो पाएगी और किसी और के घर में बीमार होने का रिस्क नहीं ले सकती थी। इसलिए आस्था ने घाव को साफ करने के बाद एक ट्यूब बैंडेड लगा दी। आस्था अपनी छोटी मोटी चोटें खुद ही ठीक कर सकती थी। उसे ये ज्ञान गांव की डिस्पेंसरी में पार्ट टाइम काम करके मिला था। वो वहां की नर्स और डॉक्टर से काम सीखा करती थी। आस्था 12th पास कर चुकी थी और इसी साल वो MBBS में एडमिशन लेने वाली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि MBBS कॉलेज में जाने से पहले ही उसके पैरों में शादी नाम की जंजीर पड़ जाएगी और वो मिस्टर हार्टलेस अरमान सिंघानिया की जिंदगी में आ जाएगी। खुद को ट्यूब वगैरह लगाने के बाद आस्था ने अरमान का लोअर ऊपर तक मोड़ लिया, हालांकि उस पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। फिर वो सीधा जाकर बिस्तर पर लेट गई। आस्था को नींद आ रही थी और लेटते ही वो गहरी नींद में सो गई। वहीं दूसरी ओर वीर रायचंद का आदमी दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने सारी बातें उसे बता दी। उसने ये भी बताया कि डेविल किंग वहां आया था, उसी ने सभी लड़कियों को बचाया है। जैसे ही वीर रायचंद ने ये सुना, उसने दोनों हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर ली। दीवार पर उसने मुक्का मार दिया जिससे उसके हाथों से खून निकलना शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वीर अपने उस गार्ड के पास गया और पूछा, ये बताओ, जब डेविल किंग ने मेरे सभी आदमियों को मार दिया है तो तुम जिंदा कैसे बच गए? वो आदमी बोला, उसने मुझसे कहा कि मैं आपको जाकर सारी बात बताऊं, कितनी खतरनाक और दर्दनाक तरीके से उसने हमारे आदमियों को मारा है, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया।
वीर ने उसकी बातें सुनकर उस आदमी का सिर कसकर पकड़ लिया और उसे लगातार दीवार पर पटकने लगा। उसने तब तक उस आदमी को मारा जब तक वो मर नहीं गया। वीर रायचंद का चेहरा पूरी तरह से खून से लाल हो गया था। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जिसमें वो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा था। तभी वीर रायचंद को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र की औरत वीर को शांत होने के लिए कह रही थी। वीर ने एक नज़र उस औरत की ओर देखा और अगले ही पल गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। वीर ने अपने कमरे में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया और जोरों से चिल्लाया, डेविल किंग, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर वीर रायचंद ने अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया और उससे कहा, पता लगाओ ये डेविल किंग कहाँ छुपा हुआ है। आज तक इस डेविल किंग ने हमारे हर मामले में टांग अड़ाई है, लड़कियों के कंसाइनमेंट से लेकर ड्रग्स के कंसाइनमेंट तक, हर तरह से इसमें हमारे काम को रोक रखा है। अब मैं इस डेविल किंग को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हर हाल में इस डेविल किंग को खोजकर निकालना ही होगा। आज तक अरमान उर्फ डेविल किंग की पहचान सभी लोगों के लिए एक राज थी। किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि शहर का नंबर वन बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया, सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक, असल में एक डेविल किंग है, जिसका लोगों में अलग ही तरह का खौफ था। शहर भर के सभी लोग डेविल किंग के नाम से कांपते थे। आस्था तो नॉर्मल अरमान सिंघानिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। क्या होगा जब आस्था के सामने आएगा डेविल किंग का रुद्र रूप? क्या आस्था कभी अरमान को अपना पाएगी, या अरमान कभी आस्था के दिल में अपनी जगह बना पाएगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।